पीढ़ी छात्रों नमस्कार। अपन की बात चल रही थी क्रिया और क्रिया के भेद। जैसा कि आपने पूर्व में देखा कि क्रिया का अर्थ होता है करना, अर्थात जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो तो उसे क्रिया कहते हैं। फिर क्रिया के भेद के बारे में आपने जाना और विभिन्न आधार पर क्रियाओं के अलग अलग प्रकार या भेद है, जिसमें पहला कर्म के आधार पर, जिसमें आपने ये पढ़ा कि कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती हैं, अकर्मक और सकर्मक। और जैसा कि मैंने बताया कि बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से कर्म के आधार पर ही क्रिया है वो महत्वपूर्ण है, तो कर्म के आधार पर क्रिया अकर्मक और सकर्मक आप पढ़ चुके हैं। अकर्मक यानी वह क्रिया जिसमें क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया वह क्रिया जिसमें क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पड़कर सीधे कर्म पर पड़ता है तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। उसके बाद में सकर्मक के दो उपभेद आपने देखे, जिसमें पहला एक कर्मक और दूसरा द्विकर्मक। एक कर्मक यानी जिसमें एक कर्म हो, द्यु कर्मक यानी जिसमें दो कर्म। आज अपन बात कर रहे हैं क्रिया के दूसरे प्रकार के बारे में, यानी संरचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया। वाक्य में क्रिया का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है या किस रूप में हो रहा है, इन सभी बातों के आधार पर किए जाने वाले भेद को संरचना के आधार पर कहलाते हैं। और संरचना के आधार पर क्रिया मुख्यतः पांच प्रकार की होती है। वापस आप ध्यान से देखें कि संरचना के आधार पर क्रिया का मतलब है कि वाक्य में क्रिया का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है या किस रूप में किया जा रहा है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए क्रिया के पांच भेद हैं, जिसमें पहला भेद है वो है संयुक्त क्रिया। संयुक्त का मतलब होता है साथ साथ में। जब दो या दो से अधिक भिन्न अर्थ वाले, ध्यान रखना, जब वाक्य में दो या दो से अधिक भिन्न अर्थ रखने वाली क्रियाओं का मेल हो तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। वापस ध्यान से सुने, जब दो या दो से अधिक भिन्न अर्थ रखने वाली क्रिया का मेल हो तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे मैं एक वाक्य बता रहा हूँ कि अतिथि आ गए हैं, अतिथि आ गए हैं, स्वागत करो, तो ये वाक्य है और ये वाक्य संयुक्त क्रिया का वाक्य है। यानी इसमें दो क्रिया हैं, जैसे कि इस वाक्य में आ गए मुख्य क्रिया और स्वागत करो इनकी सहायक क्रिया है। तो इस प्रकार मुख्य एवं सहायक क्रिया दोनों का संयोग है और इन संयोग को ही संयुक्त क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया यानी दो साथ साथ में क्रियाएं होती है। जब दो या दो से अधिक भिन्न अर्थ रखने वाले वाक्य या क्रियाओं का मेल हो तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। अतिथि आ गए तो आ गए मुख्य क्रिया है और स्वागत करो उनकी सहायक क्रिया है, तो ये वाक्य है वो संयुक्त क्रिया का है। इसमें एक ध्यान रखने की बात है कि मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रियाएं एक से अधिक भी हो सकती है, जरूरी नहीं है, क्योंकि मुख्य क्रिया तो एक ही होगी, सहायक क्रिया एक से अधिक बार भी प्रयुक्त हो सकती है या आ सकती है। तो ये तो हुआ संरचना के आधार पर क्रिया का पहला भेद संयुक्त क्रिया। दूसरी क्रिया है वो है नाम धातु क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्द जब धातु की तरह प्रयुक्त होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि संस्कृत में जो मूल शब्द होते हैं, हिंदी में जैसे मूल शब्द कहते हैं, संस्कृत में उसे धातु कहते हैं, और उस धातु के पीछे ना लगा देने से वो क्रियापद बन जाते हैं। तो दूसरा, संरचना के आधार पर क्रिया का भेद है, वो नाम धातु क्रिया है। नाम धातु क्रिया अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्द जब धातु की तरह प्रयुक्त होते हैं, यानी मूल शब्द की तरह प्रयुक्त होते हैं, तो उसे नाम धातु कहते हैं। और इन नाम धातु शब्दों में जब प्रत्यय लगाकर क्रिया का निर्माण किया जाता है, तब वो शब्द नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। वापस ध्यान दें, नाम धातु क्रिया अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्द जब धातु की तरह यानी मूल शब्द की तरह प्रयुक्त होते हैं, तो उसे केवल नाम धातु कहते हैं। और इन नाम धातु शब्दों में जब प्रत्यय जोड़ दिया जाता है, प्रत्यय लगा दिया जाता है, तो क्रिया का निर्माण होता है। और प्रत्यय लगने से के बाद ये जो क्रियाएं हैं वो नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे हाथ, हाथ एक संज्ञा है। हतिया नाम धातु, और हतियाना ये नाम धातु क्रिया हो गई। जैसे दूसरा, शुका एक विशेषण शब्द है। शुका नाम धातु भी है और शुकाना क्या बन गई, क्रिया बन गई, अर्थात नाम धातु क्रिया। अपना, अपना एक सर्वनाम शब्द है और अपनाना नाम धातु क्रिया हो गई। तो इस प्रकार संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्द जब धातु की तरह प्रयुक्त होते हैं, उसे नाम धातु कहते हैं। और नाम धातु शब्द के पीछे प्रत्यय जोड़ देने से नाम धातु क्रिया का निर्माण होता है। अब बात करते हैं संरचना के आधार पर तीसरी क्रिया, और वो तीसरी क्रिया है प्रेरणार्थक क्रिया, यानी प्रेरणा देने के लिए की गई क्रिया या कार्य। जब कर्ता स्वयं कार्य का संपादन न कर, यानी करने वाला व्यक्ति स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को करने के लिए प्रेरित करता है या दूसरे से वो कार्य करवाता है, तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जब कर्ता स्वयं कार्य का संपादन न कर किसी दूसरे को करने के लिए प्रेरित करे या उससे वो कार्य संपन्न करवाए, तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया, ये एक वाक्य है, और इसमें सरपंच ने स्वयं कार्य नहीं किया बल्कि अन्य लोगों को प्रेरित कर उनसे तालाब का निर्माण करवाया। तो इस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है, अर्थात जहाँ कर्ता स्वयं कार्य न करके वही कार्य दूसरों से करवाता है या दूसरों को प्रेरित करता है, तो वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे मैंने वाक्य बताया कि सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया, अर्थात सरपंच ने स्वयं तालाब की खुदाई नहीं की बल्कि दूसरे लोगों को प्रेरित करके तालाब की खुदाई की खुदाई का जो कार्य है वो संपन्न करवाया। तो इस कारण यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया है। आगे के बिंदु पर हम विचार करेंगे कल। धन्यवाद।